नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले असम दौरे के पहले दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और उनकी आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है। गुवाहाटी में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 114 के खंड शामिल हैं। इन परियोजनाओं से सड़क सुरक्षा में सुधार, यात्रा समय में कमी, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा और आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री कोलकाता में भाजपा की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राजनीतिक अभियान की शुरुआत का संकेत है। निर्वाचन आयोग ने कुछ दिन पहले कोलकाता में पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों से संबंधित बैठकें की थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए नोटिस दिया है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय इन नोटिसों के प्रारूप की जांच करेंगे। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिया गया नोटिस ये दर्शाता है कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा दिया गया नोटिस कानून के अनुरूप है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची अगले सप्ताह प्रकाशित हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक सूची में 6 लाख से अधिक नामों की समीक्षा की गई थी। इस बीच लगभग 35 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन मामलों का निपटारा भी शीघ्र ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजस्व सेवा अधिकारियों को राष्ट्र की आर्थिक मजबूती का संरक्षक बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास गतिविधियां करों से प्राप्त राजस्व के कारण ही संभव हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय राजस्व सेवा आयकर के 79वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से नई दिल्ली में भेंट के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारत ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ईरान से ऊर्जा और माल के निर्बाध आवागमन के महत्व पर प्रकाश डाला है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन से बातचीत में ईरान सहित उस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की प्राथमिकता पर बल दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि सभी तेल शोधन कारखाने पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के हो रही है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सेंथिल राजन ने जनता से एलपीजी सिलेंडर केवल तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट आईवीआरएस कॉल, एसएमएस बुकिंग, व्हाट्सएप बुकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही बुक करने की अपील की है। युवा संगम के छठे चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत देश भर के युवाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च है। इच्छुक युवा वेबसाइट के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।